महाभारत के इनकलाब कक्षाओं में पिछली बार चर्चा कर रहे थे विदुर नीति की, कि कैसे जब संजय पांडवों के पास गए संदेश लेकर धृतराष्ट्र का कि युद्ध नहीं करना है, शांति चाहिए इत्यादि, जब पुरोहित आए थे द्रुपद महाराज के संदेश लेकर कौरवों की सेना में, कौरवों के पक्ष में, और फिर उसके बाद अब संजय को भेजा और संजय अब वापस आए हैं। संजय रात्रि के समय आए, धृतराष्ट्र बड़े चिंता में थे, क्या कहा क्या हुआ होगा। तो फिर संजय आए और संजय ने कहा कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन बहुत थक गया हूँ, रथ आपका बड़ा हिल रहा था, तो कल सुबह सभा में सबके सामने बताऊंगा कि क्या कहा हूँ। तो रात भर धृतराष्ट्र को चिंता, पता नहीं क्या कहा होगा क्या हुआ होगा, युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, युधिष्ठिर ने क्या कहा। तो इसी चिंता में विदुर को बुला लिया कि मुझसे तो सहन नहीं हो रहा है, कुछ ज्ञान दो, कुछ बोलो मुझे। देखिए, व्यक्ति जब कष्ट में होता है तब ज्ञान मांगता है, जब दुख में होता है तब भगवान के पास आता है, भक्तों के पास आता है, बताइए क्या है, अब आप कुछ बोलिए, भगवान का विषय बोलिए। जब भौतिक दृष्टि से सुखी रहता है तो भागता रहता है, भक्त बुलाते रहते हैं, आइए आइए, मंदिर समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी। लेकिन जब कष्ट होते हैं तो भाग कर आते हैं। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र रात भर विदुर से सुनते रहे। तो बहुत सारे अध्यायों में विदुर ने जो ज्ञान धृतराष्ट्र को दिया उसका वर्णन है, और इसको विदुर नीति कहते हैं। नीतियों में कई नीतियां प्रसिद्ध हैं, जैसे चाणक्य की नीति, ये बड़ी प्रसिद्ध नीति है। शुक्राचार्य जी की नीति बड़ी प्रसिद्ध नीति है। विदुर नीति ये बड़ी प्रसिद्ध नीति है। नीति अर्थात इस भौतिक जगत में रहने के लिए किस प्रकार नैतिकता का पालन करना चाहिए, और इस जगत में रहते हुए कैसे हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, उसे नीति कहते हैं। नीति अर्थात उस तरह से रहना जिससे अंततः भगवान को प्राप्त कर सकें। लेकिन ज़्यादातर नीतियों में बहुत सारा कुछ भौतिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जगत में रहता है तो इसीलिए कहा जाता है। तो बहुत सारा कुछ विदुर ने कहा, कैसे राजा को रहना चाहिए, दुराचारी व्यक्ति कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, किसके क्या लक्षण हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, ये पूरा अपनी नीति में उन्होंने दे दिया। अर्थात अगर भौतिक दृष्टि से व्यक्ति को सुखी रहना है तो विदुर नीति बड़ी अच्छी है। तो उसमें से कुछ नीतियों को हमने पिछली बार कहा था, एक दो नीति और आज वर्णन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या हुआ उसके बाद, जब रात भर विदुर से सुन लिया धृतराष्ट्र ने और अगले दिन जब संजय आए तो क्या हुआ। तो विदुर नीति कहते कहते वो एक श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत। वैसे श्लोक को आगे भगवान भी कहेंगे, भगवद गीता में यही श्लोक दोहराया गया है। भगवद गीता में भी भगवान इसी को कहते हैं कि नरक जाने के तीन द्वार हैं, त्रिविधम नरकस्येदम, नरक जाने के तीन द्वार हैं, और वो कौन कौन से हैं, काम को लोभ और क्रोध, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद भगवद गीता के प्रारंभ में लिखते हैं कि भगवद गीता में वो सब कुछ है जो अन्य जगहों पर है, और वो भी है जो अन्य जगहों पर नहीं है। तो इसके प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं कि यही श्लोक महाभारत में है, अन्य स्थान पर विदुर ने पहले ही कह दिया, अभी तो युद्ध नहीं हुआ, अभी तो भगवान ने भगवद गीता नहीं सुनाई, लेकिन विदुर ने कह दिया। तो ये प्रमाण है कि जो भगवद गीता में वो अन्य स्थानों पर मिलेगा और जो अन्य स्थानों में नहीं है वो भी भगवद गीता में मिलेगा। अर्थात भगवद गीता पूर्ण है हमें भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। तो विदुर ने ये बात बताई और ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए जानना। इन तीन चीज़ों को, जिनको भगवान भी नरक का द्वार कहते हैं, इनको त्याग देना चाहिए। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, क्योंकि इन्हीं के कारण जीवन में कष्ट आते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति लोभ से मारा जाता है, लोभ के चलते वो कभी सुखी नहीं रह पाता। आजकल तो समय ऐसा है कि हर व्यक्ति को लोभी बनाया जा रहा है। जैसे पहले के समय में ऐसा होता था कि व्यक्ति एक बार नौकरी करते थे तो 40-50 साल जब तक रिटायर नहीं हो वहीं पर नौकरी करते थे, एक ही कंपनी में। आजकल तो एक साल अगर किसी कंपनी में कोई नौकरी कर ले तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हाँ, जब तक वो गवर्नमेंट की नौकरी ना हो जहाँ पर छोड़ के जाने के लिए एक साल लगता है, वो ना हो, लेकिन वैसे बाहर की जो कंपनियाँ हैं उसमें देखिए लोग एक साल रहते हैं, फिर कोई कहते कि ठीक है हम आपको इतना पैसा ज़्यादा देंगे तो फिर उधर भाग जाते, फिर तीसरा कहता हम इतना पैसा ज़्यादा देंगे। तो आज हमारा सारा जो कार्य करने का केंद्र है वो धन हो गया, जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाऊँगा। तो ये जो लोभ है ये भक्तों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भक्ति करनी है। भगवान कहते हैं नरक का द्वार है, विदुर भी यही कह रहे हैं कि नर त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः। तो ज़्यादातर हमारे कार्य इस जगत में लोभ के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। हर चीज़ लोभ पर है, किसको ज़्यादा मिलेगा, इलेक्शन लड़ते हैं तो लोभ है कि ठीक है पैसा दिया जाता है इलेक्शन में कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको वोट डालेंगे। तो हमारे ही नेता हम ही सबको लोभी बना रहे हैं कि ठीक है मैं आपको पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ आप मुझे वोट दीजिए, तो व्यक्ति उस तरफ भागता है। और कभी कभी ऐसा हुआ है, हम जानते हैं, कुछ साल पहले इलेक्शंस हो रहे थे तो एक गांव के लोग, ये हमें आकर उन्होंने बाद में बताया था, तो गांव के लोग जो भी वहाँ पर जो लड़ रहे थे कैंडिडेट्स जो थे, तो उनमें से एक के पास गए और उसको बोला देखिए हम लोग कार्यक्रम वगैरह करते हैं गांव में लेकिन हमारे पास कोई बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मदद कीजिए। तो उसने कहा ठीक है मैं बर्तन दे दूँगा। फिर दूसरे के पास गए, उसको भी यही बोला, उसने कहा ठीक है मैं बर्तन भी दे दूंगा साथ में बैठने बैठने के लिए जो चाहिए वो भी व्यवस्था कर दूंगा, तो ठीक है फिर आपको वोट डालेंगे। तो नेता भी हमारे सब लोभी बना रहे हैं हमें, तो हमारा सारा जीवन लोभ पर केंद्रित हो गया। हम हर चीज में ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए इसमें क्या है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लाभ। तो हर चीज को, हर वस्तु को, हर स्थान पर हम केवल लाभ देख रहे हैं। थोड़ा पीछे हम लोग केवल लाभ देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या है। मैं इसको तेज ही रखो, हवा ही नहीं आएगी तो फिर चलाने का लाभ क्या है, केवल डेकोरेशन हो जाएगा। तो हमारे मेरे लिए इसमें क्या मिल सकता है, और यही चीज हमारी भक्ति में भी आ जाती, यही लोभ की भावना भक्ति में भी आती कि मैं भक्ति कर रहा हूं मुझे क्या मिलने वाला है, मैं सेवा कर रहा हूं मुझे क्या मिलने वाला है। ये भक्ति नहीं, ये सेवा नहीं है भगवान की, जहां हम ये कामना करें कि मुझे क्या मिलेगा, मैं इतने साल मंदिर की सेवा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। ये भावनाएं ही गलत है, और ऐसी भावनाएं वैरागियों को आ जाती हैं, फिर आसक्त लोगों का तो कहना ही क्या। जैसे कोई वैरागी होते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं कि पूरा जीवन समर्पित करेंगे, लेकिन मन में आता है 20 साल बाद मेरा क्या होगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, विश्वास नहीं है। लोभ का अर्थ होता है भगवान पर से विश्वास उठ जाना, हमें भगवान पर विश्वास होना। भगवान ने इतने साल हमारे हमें जिंदा रखा, हमको खिलाया पिलाया, आगे भी करेंगे, हमें क्यों चिंता करनी। बूढ़े हो गए तो हो गए, बूढ़ा तो सबको होना, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बूढ़ा नहीं होगा? या हम लोग चिंता करेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, भगवान कहेंगे ठीक है बूढ़ा नहीं हो, तुम बहुत चिंता की तुमने, तुम बूढ़े मत हो, जवानी में मर जाओ, ऐसा तो नहीं होना है। बूढ़े तो होंगे, तो जब होंगे तब भगवान देखेंगे। इसीलिए मेरे लिए क्या है ये भावना खत्म करनी चाहिए हर चीज में, चाहे वो सेवा हो चाहे कुछ भी हो। हमें ये सोचना है कि हम क्या दे रहे हैं, लेने की भावना से देने की भावना की ओर जाना चाहिए। लेकिन हमारी सारी भावना लेने की होती है। हम कई ऐसे अनुभव हैं, कई ब्रह्मचारी रहते हैं, वो कहते हैं मैंने 10 साल सेवा किया, क्या मिला मुझे। ये वैराग्य नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या दिया, समाज को क्या दिया, मैंने मंदिर को क्या दिया, मैंने भगवान के लिए क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। मुझे क्या मिला कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोभ को त्यागना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी चिंता करते हैं कि मैंने भगवान के लिए क्या किया, तो भगवान उसकी चिंता करते हैं कि मैंने इसको क्या दिया। ये भगवान का भाव है, भगवान अपने लिए चिंता नहीं करते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं अरे इसने मेरे लिए किया तो मुझे इसके लिए कुछ करना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। तो जैसे जैसे हम भगवान की ओर जाते हैं वैसे ही भगवान भी हमारी ओर आते हैं। तो इसीलिए हमें ये लोभ को त्यागना है। तो सारा जो आज का समाज है, बाहर का भौतिक समाज, लोभ पर केंद्रित है और बढ़ाया जाता है लोभ को हर चीज में। बचपन से बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है, जब बच्चा 10वीं पास करता है तो कहा जाता है कि साइंस लो कॉमर्स लोगे तो आगे चलकर ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो साइंस लो, साइंस लोगे तो फिर शायद डॉक्टर बन जाओगे तो लाखों कमाओगे। पहले से बच्चे को ये बनाया है, उसको ये नहीं बताया जाता कि भाई तुम डॉक्टर बनो, समाज की सेवा करो, डॉक्टर बन के लोगों को ठीक करो, गरीबों को मेहनत करो, जाओ गाँव में जहाँ गरीबों के पास डॉक्टर नहीं है, हफ्ते में 15 दिन में एक बार डॉक्टर आता है, जाओ ऐसे गांव में जाओ और उनको ठीक करो। कोई माँ बाप नहीं सिखाते, वो कहते हैं अच्छा डॉक्टर बनो कोई चिंता नहीं, 20 लाख हम खर्चा करते हैं क्योंकि बाद में 50 लाख आप कमा कर देना हमें। सारा चीज लोभ पर बचपन से बच्चे को यही सिखाया जाता है और बच्चा इसी से बड़ा होता है। तो इसीलिए विदुर कहते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोभ भगवान से दूर कर देता है। जिस दिन लोभ बढ़ जाता है भगवान पर विश्वास उठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास चला जाता है कि जो भी भगवान हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है, जितना मुझे दे रहे हैं वो सही है, ये भगवान की योजना है। अगर मुझे कम मिल रहा है ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है वो भी ठीक है, ये भाव हट जाता है। इसलिए लोभ हमारे नाश का कारण होता है। और काम वो तो है ही, काम वासनाएं, काम अर्थात जब किसी चीज को पाने की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है वो वासना में बदल जाती है। तो काम, जैसे कहा गया है कि कोई मुक्ति कामी हो सकता है, कोई भुक्ति कामी हो सकता है, कामी अर्थात किसी चीज को पाने के लिए तीव्रता होना, धन का कामी हो सकता है, यश का कामी हो सकता है, तो ऐसी चीजों से परे रहना चाहिए, विदुर समझा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन तीन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और फिर वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि महाराज ये जो राज्य आप लोभ लेकर उनका ले रहे हो, उनका राज्य है, आपने उन्हें बचपन से पाला, छोटे से थे तब से आपके साथ हैं, जैसा आप कहते थे वैसा वो करते थे, इतने आज्ञाकारी थे आप कि आपको प्रेम करते, आज भी प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों उनका राज्य छीन रहे हो? उनका राज्य उनको दे दीजिए। तो ऐसे विदुर ने जब समझाया तो धृतराष्ट्र और चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा था विदुर आकर कुछ थोड़ा शांत करेंगे कि चिंता नहीं करो हम लोग जीत जाएंगे, हाँ सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, बोले राज्य वापस दे दो उनका जो देना है, उनका अधिकार है। और अंत में विदुर कहने लगे वैसे उन्होंने बहुत सी और नीतियों को कहा और फिर अंत में उन्होंने भगवान का वर्णन किया, क्योंकि कोई भी नीति बिना भगवान के वर्णन की नीति नहीं कहला सकती। तो भगवान का वर्णन किया कि सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, भगवान हैं, उनसे तो डरो कम से कम। सब तरह से वो सिखला रहे थे धृतराष्ट्र को कि कुछ तो करो, चाहे लोभ त्यागो, डर पैदा करो, कुछ हो दे दो राज्य वापस उनका, नहीं तो बड़ा नाश होगा। तो ऐसे वो बोलते रहे और बहुत सी बीच में कथाएं हैं, उन्होंने काफ़ी कथाएं सुनाई, विदुर ने इतिहास सुना सुना कर उनको विश्वास दिला रहे थे कि लोभ नहीं होना चाहिए। भाई जब आपस में लड़ते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो खैर रात बीत गई, पूरी रात विदुर सुनाते रहे उनको। सुबह हो गई, अब जाना था सभा में, तो सब सभा में बैठे सारे थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, तो सब बैठे हैं। और अब संजय आए, तो संजय से धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम गए थे वहां पर, तो अर्जुन ने जो संदेश दिया वो कहो, बाकी किसी का नहीं पूछा अर्जुन ने जो संदेश दिया उसको कहो। तो संजय ने कहा ठीक है। तो संजय ने अर्जुन का संदेश देना शुरू किया। तो संजय ने कहा कि अर्जुन ने संदेश दिया है कि अगर हमारा राज्य वापस नहीं दिया गया, जो हमारा राज्य है अगर वो वापस नहीं दिया गया, तो मैं केवल इतना समझूंगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई पूर्व जन्म का बड़ा बुरा कर्म है जिसके कारण वो सारे मारे जाने वाले हैं। अर्जुन भी बड़ी अच्छी तरह से बता रहा है, ये तुम्हारे पूर्व कर्म है, मरने वाले हो सब के सब, तो मैं तो यही समझूंगा, नहीं तो दूसरा और क्या हो सकता है, कोई और कारण नहीं है। जब सब कह रहे हैं कि नहीं करो तो भी आप उसको सुन नहीं रहे हो। तो ऐसे अर्जुन ने कई चीजें कही। फिर अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन को समझाना, ये संजय बोल रहे हैं सबके सामने कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन को समझाना, जब संदेश दिया जाता है तो जैसा कहा है वैसा ही बोला जाता है। तो संजय दुर्योधन के सामने खड़े होकर उसको बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है वो दुर्बुद्धि दुर्योधन को समझाना कि युद्ध नहीं करे, किसके बल पर युद्ध कर रहा है और किससे युद्ध कर रहा है, किसमें शक्ति है जो भीम का सामना कर सके, किसमें शक्ति है जो मेरा सामना कर सके, मैं जब खड़ा होऊंगा मेरे साथ में कृष्ण होंगे, उस रथ का कौन सामना कर सकेगा, तो क्यों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है अपना नाश। अर्जुन ने कहा कि इतना सारा उसने वर्णन किया, बहुत लंबा वर्णन, और उसमें अर्जुन यही कह रहे थे कि सब मरने वाले हो, क्यों मरना चाहते हो, रुक जाओ, मत करो, युद्ध नहीं करो इत्यादि। तो वो कह रहे थे कि जैसे सूखे पत्ते होते हैं तो उनमें जब आग लग जाती है तो पूरी फैल जाती है, फिर वो जलाकर राख कर देती है, इसी तरह अगर युद्ध हुआ तो ये एक ऐसी अग्नि के समान होगी जो सब कुछ जला कर राख कर देगी, कुछ नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने वर्णन किया भीम के बल का, युधिष्ठिर के बल का, नकुल सहदेव के बल का, और अन्य राजा जो उनके साथ थे उनका, कि इन लोगों का कौन सामना कर सकता, इसीलिए आप ये सब ये युद्ध करने की जो बात है उसको त्याग दीजिए और हमारा जो राज्य है वो हमें वापस कर दीजिए। तो इसको सुनकर भीष्म खड़े हुए और भीष्म ने कहा कि मैं अर्जुन के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूँ, जो भी अर्जुन ने कहा है वो एकदम सत्य है और हमें संधि कर लेनी चाहिए। संधि समझते हैं आप लोग, समझौता कर लेना चाहिए, तो हमें संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्योधन किसके बल पर इतना, बंबई की भाषा में कहते हैं, उछल रहा है ना ऐसे, तो ये जो दुर्योधन है ये किसके बल पर इतना उसको अहंकार आ गया है कि वो पांडवों से लड़ने की इच्छा कर रहा है, अर्जुन से, और कौन है अर्जुन जिससे वो लड़ना, अरे इंद्र भी अगर आ जाए तो अर्जुन को हरा नहीं सकते और उनसे ये लड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, भीष्म कहते हैं एक समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बैठे थे वहां, सभा चल रही थी, कोई चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि दो तपस्वी वहां से जा रहे हैं और वो सीधे चले गए, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सभा हो रही, कुछ देखा नहीं, पार करके चले गए। तो सारे देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन है, क्योंकि ब्रह्मा जी को देखकर तो सारी दुनिया में लोग दंडवत प्रणाम कर देते हैं, ये कैसे तपस्वी हैं जो ऐसे ही चले गए। तो सबने पूछा कि कौन है ये, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये है नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि हैं जिनकी शक्ति बहुत है, नारायण स्वयं भगवान हैं और नर उनका मित्र है, इन दोनों को कोई हरा नहीं सकता। तो देवताओं ने बोला अच्छा, तो ब्रह्मा जी को छोड़ के उनके पीछे चले गए वो, कि हरा नहीं सकता तो फिर उधर ही जाना है। तो नर नारायण ऋषि के पास आए, प्रार्थना की, उन्होंने बोला बताओ क्या चाहिए। तो ये देवताओं ने कहा हमारे लिए युद्ध कीजिए, ऐसा ऐसा युद्ध हो रहा है। तो उस समय भीष्म कहते हैं कि नर नारायण में से नर अर्थात जो अब अर्जुन के रूप में है, तो उसने अकेले युद्ध किया था देवताओं की तरफ से और जितने उनके शत्रु थे सबको मार दिया था, जिनको देवता नहीं मार पा रहे थे अकेले उसने मार दिया था। और वही नर नारायण अब यहां श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए उनसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। और ये दुर्योधन, ये सूत पुत्र कर्ण के बल पर इतना अहंकार कर रहा है, भीष्म ऐसे ही बोलते थे, भीष्म ने कभी अच्छे शब्द इस्तेमाल ही नहीं किए कर्ण के लिए, क्योंकि उनको बड़ा क्रोध था कि इसके कारण दुर्योधन इतना झगड़ा कर रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है इसके कारण। तो उन्होंने कहा ये सूत पुत्र कर्ण, इसके लिए इतना अहंकार दुर्योधन को, इसके बल पर लड़ने वाला है अर्जुन से। तो जब कर्ण से कहा तो कर्ण कैसे चुप बैठेगा, कर्ण सोच रहा था ये तो हम लोग की बात चल रही, मेरा नाम क्यों बीच में ले लिया। तो कर्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे, आप हमेशा मेरे लिए निंदनीय शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी आदर से बोला ही नहीं। भीष्म क्यों बोले आदर से, भीष्म उनसे छोटे हैं या उनसे शक्ति में कम है। तो कहने लगे कि आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए आदर से शब्द, और आप कहते हैं कि हमें संधि करनी चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है। अरे जब शत्रु युद्ध करने के लिए आ रहा है तो एक क्षत्रिय के रूप में हमें युद्ध करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। कर्ण कह रहा है, मतलब भीष्म को कह रहा था कि आप डर रहे हो इसलिए डर करके, तो हमें डरना नहीं चाहिए और हमें युद्ध करना चाहिए। और मैं आपको वचन देता हूं, सबके सामने बोलते कर्ण, मैं वचन देता हूं पांडवों का वध मैं करूंगा। तो जब भीष्म ने सुना तो भीष्म ने कहा कर्ण ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं देख चुका हूं विराट राजा के समय पे क्या हुआ था, तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने अर्जुन ने मार दिया, क्या कर लिया तुमने, कौन सा बचा लिया, वहां हम सब थे, अर्जुन अकेला था, तुमने बचा लिया या तुम खुद बचे, तुम्हें भागना पड़ा, हमें भागना पड़ा, अर्जुन का कोई सामना नहीं कर पाया, ये विराट के युद्ध में अभी देख चुका हूं मैं। और अगर तुम्हें याद नहीं हो तो पहले समझाता हूं, याद दिलाता हूं, जब वन में गए थे ये लोग तो आप सब गए थे कर्ण दुर्योधन इत्यादि अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए वन में, कि ये लोग अभी वनवासी हो गए, इनको राजा का ऐश्वर्य दिखाएंगे। तब भी जब गंधर्वों से युद्ध हुआ था कौन भागा था, भीष्म को पूछते हैं क्या क्या स्थिति हुई थी तुम्हारी, आप सबको याद है ना, जब पांडव वन में गए थे तो कौरवों ने सोचा कि वहां जाकर हम लोग इनको अपना ऐश्वर्य दे, अब तो ये तो वनवासी हो गए, खाने के लिए नहीं है इनके पास, अब हम जाएंगे बड़ा ऐश्वर्य दिखाएंगे अपना राजसी ठाट बाट और ये, तो सब चले गए दिखाने के लिए। और वहां गए, वहां युद्ध हो गया गंधर्वों से, तो ऐसा युद्ध हुआ कि कर्ण के साथ युद्ध हुआ, कर्ण भाग गए वहां से, कर्ण को भागना पड़ा, दुर्योधन को बंदी बना लिया, बाकी सब भागे वहां से और दुर्योधन को बंदी बनाकर वो लोग ले जा रहे हैं। उस समय युधिष्ठिर को पता चला और युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम से कहा जाओ उसको छुड़ा कर लाओ। तो अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा दुर्योधन को मरने दो, अच्छा है गंधर्व मार दे, हमें मारना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी आपस में झगड़ा है परिवार में, लेकिन बाहर वाला अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हमें रोकना चाहिए, तो जाओ उसको बचा लो। तो भीष्म याद दिलाने लगे कि कर्ण उस समय तुम भी थे गंधर्वों से युद्ध में, क्या हुआ था, दुर्योधन को बंदी बनाया, तुम्हें भागना पड़ा था, किसने बचाया था, अर्जुन ने। तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो कि मैं पांडवों को मार दूंगा। तो द्रोणाचार्य भी वहां पर थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सही है जो भीष्म कह रहे हैं, सही है, मैंने अर्जुन को सिखाया है और इसीलिए मैं आप सबको बताता हूं कि अर्जुन का सामना कोई नहीं कर सकता, इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, प्रयास भी मत कीजिए नहीं तो सब मारे जाएंगे। मतलब सब लोग कह रहे थे, ये जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं ये एक बात बतलाने के लिए कि दुर्योधन को हर कोई समझा रहा था। अभी आगे प्रसंग आएगा कि खुद उसके पिता ने समझाया, गांधारी ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, हर कोई उसको समझा रहा था कि तुम गलत कर रहे हो, श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। तो कितना व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है, लोभी हो जाता है या द्वेषी हो जाता है, तो कितने लोग, उसको ये तो सोचना था मेरे अपने पिता, मेरी माता, व्यासदेव, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब समझा रहे हैं, संजय, विदुर सब समझा रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो युद्ध तो करूंगा। तो इस समय सबने समझा दिया तो भी वो माने नहीं, तो उस समय धृतराष्ट्र गुस्सा हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, जो भीष्म कह रहे हैं वो सही है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब सबके सामने बैठे हैं धृतराष्ट्र, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, जो ये लोग कह रहे हैं सही है, और आप लोग अर्जुन की बात कर रहे हो, लेकिन मैं बताता हूं मुझे किससे भय है, मुझे भीम से भय है। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी ना कि 100 पुत्रों को अकेले मारूंगा मैं। किसने प्रतिज्ञा ली थी? भीम ने ली थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सब ठीक है अर्जुन की, लेकिन मुझे ज्यादा भय भीम से है। मैं सोच रहा हूं कि जब वो युद्ध करेगा, अपनी गदा लेकर उतरेगा, तो क्या हालत होगी मेरे पुत्रों की और क्या हालत होगी मेरी सेना की, तो इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र खुद बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये सब ठीक नहीं है, युद्ध बंद करना चाहिए। तो ऐसे धृतराष्ट्र ने कहा। तो उस समय दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं ठीक है आपके लिए, लेकिन एक क्षत्रिय को कमजोर नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, आप किसकी चिंता कर रहे हो? ठीक है, अगर जो भी है वो शक्तिशाली हैं, तो क्या हम शक्तिशाली समझकर भाग जाएं? तो उस समय विदुर ने समझाया, सब ने समझाया, दुर्योधन नहीं माने। फिर बाद में संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि तुम श्री कृष्ण के विषय में बताओ, तुम कुछ कह रहे थे कि कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, भगवान हैं। तो संजय ने कहा आप व्यासदेव को बुलाइए और गांधारी को बुलाइए, उनके सामने कहूंगा ताकि आपको मेरी बात का विश्वास हो, वो लोग भी समर्थन करें, व्यासदेव कहेंगे तब तो आप मानेंगे। तो उनको बुलाया गया और उस समय संजय ने बताया कि श्री कृष्ण परम भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो भगवान हैं, और फिर उनके अलग अलग अवतारों का वर्णन किया, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, सब बताया कि देखो ऐसे ऐसे उन्होंने मारा, और फिर पूर्व में क्या क्या उन्होंने किया, रुक्मिणी का हरण किया, सारे राजा थे, कौन कौन रोक सका उनको, कंस को मार दिया, किसने बचा लिया कंस को, नरकासुर का वध किया, किसने कुछ कर लिया। तो श्री कृष्ण की शक्ति बहुत है अगर भौतिक भारी दृष्टि से देखी जाए, और वैसे वो भगवान हैं। तो उस समय संजय ने भगवान श्री कृष्ण के कई नामों का वर्णन किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र को कथा में आनंद आने लगा, अभी वो भूल गया युद्ध का। तो धृतराष्ट्र कह रहा अच्छा भगवान के नामों को बताओ मुझे, उनके नामों का अर्थ बताओ। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कितना विचित्र है, देखिए कृष्ण कथा की शक्ति, वो व्यक्ति जो चिंता में बैठा है कि मेरे पुत्र मरने वाले, युद्ध करें या ना करें, वो प्रश्न कर रहा है कि कृष्ण के नामों को बताओ, कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है वो बताओ, देखिए कृष्ण कथा की शक्ति। तो संजय अलग अलग नाम लेकर बताने लगे कि क्या क्या नाम होते हैं भगवान के, वासुदेव का वर्णन किया, उसका क्या अर्थ है, कृष्ण का वर्णन किया, जनार्दन का वर्णन किया, गोविंद का वर्णन किया, ऐसे कई नाम उन्होंने लिए और हर एक का अर्थ बताने लगे कि इसका अर्थ ऐसे होता है, उसका अर्थ ऐसे होता है। जैसे वासुदेव शब्द का उन्होंने बताया कि भगवान सब जगह वास करते हैं, इसलिए वसु कहलाते हैं, और देवताओं के वो स्रोत हैं, सारे देवता उनसे आते हैं, इसलिए उनको देव कहा जाता है और इसी दृष्टि से उन्हें वासुदेव कहते हैं। ऐसे अलग अलग नामों का उन्होंने भेद करके बहुत सारे नामों का अर्थ बताया कि भगवान के नाम के क्या अर्थ हैं। तो बहुत से नाम बताए, वासुदेव बताया, जनार्दन बताया, विष्णु बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें यही श्री कृष्ण को विष्णु कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो सब जगह पर व्याप्त हैं, इसीलिए विष्णु कहलाते हैं। देखिए कभी कभी हम सब के मन में प्रश्न आता है कि कृष्ण को विष्णु कहीं जगह पर कहा गया है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उन्होंने श्रवणम कीर्तनम कृष्ण नहीं कहा। तो लोग कहते हैं देखो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि विष्णु का करना चाहिए, आप कृष्ण का क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर हम भागवत अच्छी तरह पढ़ें, प्रहलाद महाराज के गुणों में प्रमुख गुण था वासुदेवे भगवती भव्यस्य नैसर्गिकी रति, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो, स्वाभाविक भक्त हैं उनके, और इसीलिए उन्होंने विष्णु शब्द इस्तेमाल किया। क्यों विष्णु शब्द इस्तेमाल किया? क्योंकि वो बता रहे थे उसको, हिरण्यकशिपु को, कि भगवान सब जगह हैं, वो कृष्ण सब जगह हैं और उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि वो सब जगह देखना चाहता था। आगे जाके वो कहेगा अच्छा तुम्हारे भगवान सब जगह है, खंभे में है, तो हाँ है, इसीलिए विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ऐसे अलग अलग शब्दों का अर्थ बताया। तो धृतराष्ट्र को विश्वास हो गया कृष्ण भगवान है, तो उसने उस समय दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन भी वहां था, गांधारी थी, व्यासदेव थे, तो धृतराष्ट्र ने समझाया कि देखो वो भगवान है, कैसे तुम युद्ध कर सकते हो उनसे? दुर्योधन कहता है मैं मान लेता हूं वो भगवान है, लेकिन क्योंकि वो अर्जुन के साथ हैं मैं उनसे युद्ध करूंगा। ये हमारी बुद्धि है, हम भगवान को तब भगवान मानते हैं जब वो हमारी तरफ हो, है ना? कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, एग्जाम में जाने के पहले मंदिर में 3 बार माथा टेक कर जाता है और फेल हो जाता है, तो क्या कहता है? भगवान है ही नहीं, राइट? भगवान नहीं है, क्यों? अरे इतना किया मैंने, पढ़ाई की, माथा टेका, 3 बार माथा टेका, शायद नारियल वारियल भी फोड़ते हैं आके, तो सब किया लेकिन पास नहीं हुआ या नंबर कम आए, तो भगवान है ही नहीं। तो हम भगवान को तब मानेंगे जब भगवान हमारी तरफ है, ये दुर्योधन की भावना है। दुर्योधन कहते हैं मैं मान लेता हूं वो भगवान है, मान लिया उसने कि ठीक है वो भगवान है, लेकिन क्योंकि अर्जुन की तरफ है मैं उनसे युद्ध करूंगा। तो भगवान को ऐसे भगवान नहीं मानना चाहिए कि अगर वो हमारे लिए कुछ करे तो वो भगवान है, नहीं करे तो फिर हम नहीं मानते, उनसे युद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कृष्ण दुर्योधन की तरफ हो जाते तो दुर्योधन उनको हाँ हाँ भगवान है, आसन पे बैठा पूजा आरती करेंगे, क्यों मेरी तरफ है, लेकिन आज बोल रहा है कि उनकी तरफ है इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांधारी ने डांटा, गांधारी ने कहा तू पूरे कुल का नाश करेगा। देखिए आप लोगों ने ये सब शायद महाभारत के हिस्से नहीं सुने होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कोई सीरियल में भी शायद नहीं दिखाए जाते, वहां तो बस यही दिखाया जाता है, गलत नहीं, सब समझा रहे थे उसे। गांधारी ने बहुत डांटा, गांधारी ने कहा कुल का नाश करेगा दुष्ट, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए उसके लिए कि बंद कर ये सब, युद्ध नहीं करना, लेकिन दुर्योधन किसी की नहीं सुन रहा। फिर व्यासदेव ने समझाया, व्यासदेव ने कहा, व्यासदेव कह रहे हैं, आप देखिए सोचिए किसी व्यक्ति के सामने व्यासदेव खड़े होकर अगर कुछ कहें और वो उसको स्वीकार नहीं करे, क्या बुद्धि होगी उस व्यक्ति की। खैर दुर्योधन के सामने तो कृष्ण भी आकर कहने वाले हैं वो स्वीकार नहीं करेगा, फिर व्यासदेव की तो क्या बात है। तो व्यासदेव ने समझाया कि देखो ये सही नहीं है, तुम ऐसे कार्य मत करो, इसको रोक दो, युद्ध रोक दो, कोई जीत नहीं सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूं केवल नाश होगा और सारे नाश का कारण तुम होगे, बंद कर दो। लेकिन उसने बंद नहीं, ये स्वभाव, ये द्वेष और ये जिसे कहते हैं जिद्दीपन कि नहीं मुझे तो यही करना है, ये हमारे नाश का कारण है। जब हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजन हमसे कुछ कहें, अगर हम उस बात को सही भी मानते हैं लेकिन हमारे गुरुजन हमसे कह रहे हैं कि ये गलत है, तो गलत स्वीकार करना चाहिए। ये भक्ति है और ये प्रगति का मार्ग है, अन्यथा दुर्योधन का भाव। कितने सारे लोग समझा रहे हैं, उनके पिता, उनकी माता, व्यासदेव, विदुर, संजय, भीष्म, द्रोणाचार्य, सब समझा रहे हैं और सारे वरिष्ठ हैं उनसे, लेकिन किसी की नहीं सुना। तो भक्ति में एक सिद्धांत हमें पालन करना चाहिए कि हो सकता है हम किसी चीज को सही माने, हमारा मत हो सकता है अन्य लोगों के मत से अलग हो, लेकिन अगर हमारे वरिष्ठ, अगर हमारे गुरुजन हमसे कुछ कहते हैं कि ये गलत है, तो उसको गलत स्वीकार करना चाहिए। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है, ये सच्ची नम्रता है। नम्रता ये नहीं है कि हम किसी के सामने जाकर पूर्ण दंडवत प्रणाम कर दें, बड़ी नम्रता से उनके सामने रहें, जब वो आए तो उनको कुछ अर्पण, नहीं। सच्ची नम्रता ये है कि अगर हम ये जाने हम कुछ करना चाहते हैं, हम उसको सही मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ ये हमें समझाते हैं कि ये गलत है, इसको बंद करो, तो बंद करना, ये नम्रता है। जैसे कई उदाहरण हैं, हम बता रहे थे उस दिन भी कि पराशर मुनि ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में वो सारे असुरों को जलाकर खत्म करने वाले थे, ऐसा यज्ञ प्रारंभ कर दिया क्योंकि एक असुर ने उनके पिता का वध कर दिया था। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि ने आकर रोका कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने रोक दिया। ये सच्ची नम्रता। हालांकि वो सोच रहे थे मेरे पिता को मारा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं सब, लेकिन केवल बोलने के लिए बोला और उन्होंने छोड़ दिया। ध्रुव महाराज, उनके भाई का वध हो गया, उन्होंने यक्षों को मारना प्रारंभ किया, फिर अनु ने आकर कहा कि मत मारो, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए अपने मत को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा मत दूषित हो सकता है, लेकिन जब आचार्यों का मत आता है, वरिष्ठों का मत आता है, वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। हमें ये जानना चाहिए कि उसी से लाभ होगा। तो दुर्योधन की भावना में नहीं रहना है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोग उसको समझा रहे हैं कि दुर्योधन युद्ध नहीं करो, लेकिन वो सुन नहीं रहा। तो ये द्वेष, ऐसा द्वेष या ऐसा लोभ या ऐसी भावना हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। हमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो सहयोग की भावना, एक साथ मिलकर रहने के कुछ सूत्र हैं कि कब व्यक्ति साथ में मिलकर रह सकता है। आजकल तो एक छोटा सा परिवार भी साथ में नहीं रह पाता, लेकिन भक्तों के समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे से बहुत मिलकर रहना चाहिए। तो मिलकर रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहली भावना एक साथ मिलकर रहने की ये होनी चाहिए कि व्यक्ति देखे कि मेरी वजह से कभी किसी दूसरे को कष्ट ना हो। ये एक भावना बहुत आवश्यक है। अगर हम साथ में रहना चाहते हैं तो ये भावना होनी चाहिए कि मेरी वजह से दूसरे को कभी कष्ट ना हो। अगर हर व्यक्ति इस भावना में है तो सोचिए वो समाज कितना अच्छा होगा। लेकिन आजकल का समाज है कि मुझे सब मिल जाए, बाकी किसी को कष्ट हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा घर साफ रहे, पड़ोसी के घर में कचरा फेंक दूं, कोई चिंता नहीं मुझे, वो साफ करता रहेगा, क्या करना। ये भावना ठीक नहीं, ये कोई साथ में रहने के लिए। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब मिलकर रहें। श्रील प्रभुपाद ने कहा है अपने सारे आने वाले और उस समय के अनुयायियों के लिए कि अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो आप अपना प्रेम सहयोग के द्वारा दर्शा सकते हो। आप आपस में सहयोग करो, वो मेरे लिए प्रेम होगा। तो इसीलिए ऐसी भावना में हमें रहना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने के लिए सोचें, अपने ही मत को पकड़कर नहीं रहें कि बस मैं जो कह रहा हूं एक व्यक्ति के लिए। दुर्योधन, जिसको शकुनी और कर्ण बहुत सहयोग कर रहे थे, तो उस एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा युद्ध, सारा विनाश हुआ, कुल का नाश हुआ, करोड़ों लोग मारे गए इस युद्ध में। महाभारत में वर्णन है करोड़ों लोग मारे गए, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना मारी गई, और 18 अक्षौणी तो प्रमुख सेना थी, उनके अलावा बहुत सारे लोग थे जो युद्ध कर रहे थे, तो करोड़ों लोग मारे गए। केवल एक व्यक्ति की अहंकार द्वेष के कारण। इसीलिए हमें इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें अपने मत को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। कभी आपका मत स्वीकार होगा, कभी नहीं होगा, कोई बात नहीं, सहयोग की भावना। तो ऐसे जब बहुत समझा दिया, दुर्योधन नहीं माने, और दुर्योधन ने कह दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, तो उस समय फिर और भी संदेश सुनाए संजय ने कि बाकी लोगों ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये सारे संदेश सुनाए। और इधर अब युधिष्ठिर को समाचार तो मिल गया कि दुर्योधन स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह गुप्तचर रहते थे। उनके जो गुप्तचर समझते हैं आप लोग, जासूस बोल सकते हैं, तो उनके कौरवों के यहाँ रहते थे, यहाँ के वहाँ रहते थे, जब भी कुछ होता था तुरंत सूचना आ जाती थी। तो युधिष्ठिर को सूचना मिल गई कि ये स्वीकार नहीं कर रहा, तो युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ श्री कृष्ण के पास गए, और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि देखिए, मैंने तो केवल 5 गाँव मांगे थे, 4 गाँव के नाम उन्होंने बताए थे, और एक कहा था जो भी गाँव आपको देना है दे दीजिए, तो मैंने तो केवल 5 गाँव मांगे थे, वो भी दुर्योधन देने के लिए नहीं तैयार है, तो आप बताइए इसमें हमारी कोई गलती है? अब मुझे भी तो कर्तव्य है, अपने परिवार को चलाना है, मुझे भी तो जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूंगा, मेरे भाइयों की जिम्मेदारी है, तो क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान समझ गए, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊँगा बात करने के लिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए, वैसे कहना चाहते थे लेकिन कैसे कहें, सीधे भगवान को कह सकते हैं कि आप मेरे दूत बनकर जाइए, तो ना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतने राजा हैं और दूसरे सब आए हुए हैं, दुर्योधन द्वेषी है, कहीं आपका अपमान कर दिया तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा, क्यों, अगर मैं गया और उन्होंने मेरी बात मान ली तो भी अच्छा है, और मैं गया और उन्होंने मेरा अपमान कर दिया तो मैं वैसे ही उन सबको वहीं खत्म कर दूंगा तो भी अच्छा है, दोनों तरफ से तुम्हारा लाभ होगा, क्योंकि अगर मैं गया और उन्होंने बात मान ली तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, और अगर उन्होंने मेरा अपमान किया तो वैसे ही मैं उनको खत्म कर दूंगा सबको, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं जाऊंगा तुम्हारा दूत बनकर, मैं जाऊंगा बात करूंगा उनसे। तो युधिष्ठिर ने कहा, जैसा आप ठीक समझें, अगर आपको लगता है कि आपके जाने से शांति हो सकती है, मुझे अभी भी शांति चाहिए, युधिष्ठिर अब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं, तो इसीलिए आप जाइए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। तो अब वो जाने वाले थे उस समय पर, जब भगवान तैयार हो गए कि ठीक है मैं अभी जाता हूं, उनको बात करके आता हूं, तो उस समय द्रौपदी आई, क्योंकि द्रौपदी अभी तक चुप बैठी थी, सुन रही थी, सोच रही थी युद्ध होगा युद्ध होगा युद्ध होगा, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कृष्ण जा रहे हैं, कोई और जा रहे होते तो शायद वो उनको इतना तकलीफ नहीं होती, कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो वो मना के आ जाएंगे और युद्ध नहीं होगा। तो अब द्रौपदी उनके सामने आई, सारे बैठे हैं, और द्रौपदी ने आकर कहा कि, याद दिलाने लगी कृष्ण को कि आपको याद है कि क्या हुआ था मेरे साथ उस सभा में, मुझे खींच कर लाया गया था, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, और ये भीम, और उससे पहले ये हुआ था कि भीम और अर्जुन ने भी कहा ठीक है हम भी शांति चाहते हैं, हम भी युद्ध नहीं चाहते, भीम ने भी कहा ठीक है अगर युधिष्ठिर की इच्छा, हम भी शांति चाहते हैं, आप जाइए शांति का प्रस्ताव लेकर। तो द्रौपदी ने कहा कि ये भीम और अर्जुन इनको अगर हो सकता है अपनी शक्ति पर अभी शंका हो गई हो, ये जीतना नहीं चाहते, सोच रहे जीतेंगे या नहीं, इसलिए शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन आप भूल गए क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे मुझे खींच कर लाया गया था, कैसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, और अपने बालों को लेकर दिखाने लगी कि आज तक मैंने बाल बांधे नहीं है। द्रौपदी ने जब तक भीम ने दुशासन की छाती का खून लाकर नहीं दिया, बाल नहीं बांधे थे तब तक। वैसे बाल नहीं बांधना, ये आजकल तो लोग सोचेंगे कौन सी बड़ी बात होगी, बाल नहीं बांधे मतलब क्या, इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है, लेकिन बाल खोलना ये अशुभ लक्षण है। खुले बाल रखना स्त्रियों के लिए ये अशुभ माने जाते हैं, जैसे कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो बालों को खोल देते हैं। आजकल तो बांधते कम है, बोल बाहर की दुनिया में आप देखिए तो बालों को खोल, तो हम कभी कभी ये वर्णन करते तो हमें ये बताना पड़ता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है बाल नहीं बांधे, तो हम लोग तो रोज नहीं बांधते हैं, तो द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे कौन सी बड़ी बात हो, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि स्त्रियां बाल खुले नहीं रखती थी, ये अशुभ लक्षण माने जाते थे। ये केवल तब होता था जब कोई मातम मनाना होता था, कोई दुख की बात होती, कोई मर जाता था तब किया जाता। तो द्रौपदी ने दुख को प्रकट करने के लिए अपने बाल कभी बांधे नहीं जब तक दुशासन का वध नहीं हुआ। तो द्रौपदी अपने बालों को दिखाने लगी कि देखो अभी तक मैंने बाल बांधे नहीं है, आपको याद है ना, और फिर रोने लगी और सब बातें याद करने लगी कि कैसा कैसा अपमान हुआ मेरा इत्यादि, और आप अब जा रहे हैं उस युद्ध को रोकने के लिए, तो मुझे आपसे वो आशा नहीं, मैं तो इतने समय यही इंतजार करने कर रही हूं कि कब युद्ध होगा और कब मेरे जो अपमान का बदला वो लिया जाएगा, और अब आप हैं कि युद्ध बंद कराने जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, रो रही थी बहुत, रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि कृष्ण भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि चिंता नहीं करो, जैसे तुम आज रो रही हो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कुरु वंश की हर स्त्री रोएगी ऐसे, क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं सारे कुरुवंश के जितने भी कौरव हैं उनकी जो पत्नियां हैं ऐसे ही रोएंगी, ऐसी ही स्थिति में आएंगी। अर्थात भगवान ने उसी समय घोषणा कर दी सब मरने वाले, चिंता मत करो, ये तो सब ड्रामा चल रहा है, नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं अब शांति के लिए जो जा रहे हैं जाने के पहले क्या करें, सब मरने वाले चिंता मत करो, मतलब उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, ये सब उन्होंने पहले से रचा कर रखा है कि मैं जाऊंगा वो लोग मानेंगे नहीं, फिर युद्ध होगा, सब पता है भगवान को, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो शांति दूत बनकर जा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी को बता रहे हैं चिंता मत करो शांति होने वाली नहीं है। तो ऐसे भगवान फिर शांति दूत बनकर जाने लगे, और द्रौपदी को उन्होंने सांत्वना दी कि चिंता नहीं करो, सारी कुरुवंश की कौरवों की सारी स्त्रियां रोएंगी इसी तरह जैसे मैं तुम्हें वचन देता हूं, विश्वास रखो मेरे ऊपर। तो ऐसे कह के फिर श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए हस्तिनापुर शांति दूत बनकर। तो भगवान का ये शांति दूत बनकर जाना बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, अगले सोमवार को हम लोग इस पे चर्चा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? यस माइक किधर है आप? अर्जुन ने नहीं मारा, ऐसा होता है कि भक्त जो होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, वो भगवान के हृदय को जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। और इसीलिए जब अर्जुन से भगवद गीता के समय भगवान ने युद्ध करने को कहा, भीष्म को मारने को कहा, द्रोणाचार्य को मारने को कहा, तो अर्जुन ने वो किया क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी। लेकिन जब भगवान ने अश्वत्थामा को मारने के लिए कहा कि मार दो इसे, तो अर्जुन जानते थे कि वो भगवान की इच्छा नहीं थी, वो उसकी परीक्षा थी। दो अवस्थाएं होती हैं भगवान के आदेश की, एक जहां भगवान चाहते हैं, दूसरा भगवान जहां परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त ठीक से मेरा हृदय समझा है या नहीं समझा। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के हृदय को जानते हैं, इसलिए वो कार्य करते हैं जो भगवान को आनंद दे, वो कार्य नहीं करते जो उन्हें सही लगे। तो बाहरी दृष्टि से कृष्ण के आदेश का पालन करना सही था अर्जुन के लिए, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अर्जुन जानते थे कि भगवान चाहते नहीं हैं ये केवल परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन क्रोध में आकर कहीं गलत काम तो नहीं कर देता, अपने ही गुरु समान उनकी हत्या तो नहीं करता। तो इस चीज़ को देखते हुए अर्जुन ने मना किया। तो ये आचार्य समझाते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के हृदय को जानते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वही वो करते हैं। और इस पर भगवान प्रसन्न हुए थे, अगर भगवान की इच्छा होती और अर्जुन ने मना किया होता तो स्वाभाविक है भगवान थोड़ा कुछ डांटते, जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय मना कर दिया भगवद गीता के समय युद्ध नहीं कर, तो भगवान ने डांटा कि क्या तुम कायरों जैसी बातें कर रहे, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम आजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, तो भगवान ने डांटा। लेकिन यहाँ भगवान ने डांटा नहीं, भगवान प्रसन्न हुए। तो इसीलिए अर्जुन जैसे भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। और हम सब के लिए, हम कैसे जान सकते हैं भगवान की क्या इच्छा है क्या नहीं है, अगर ऐसे आ गया उल्टा आदेश हमें कैसे पता चलेगा? आचार्यों के द्वारा। हम तो अर्जुन की तरह उतने शुद्ध नहीं है कि भगवान के हृदय को जान सकें, लेकिन जो शुद्ध हैं, जो भगवान के हृदय को जानते हैं, तो उनके अनुसार जब हम चलते हैं तब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? यस, पीछे।
हरे कृष्ण को
हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक थे, कोई पूजा अर्चना नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। देवी देवताओं की आराधना वो करते थे, लेकिन भगवान को ना स्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण कारण था भक्तों से द्वेष। जो व्यक्ति भक्तों से द्वेष करता है वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता, और इसका प्रमाण भगवान ने स्वयं दिया। अभी जब आगे शांति दूत बन के जाते हैं तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं इनको बड़ी अच्छी तरह खिला पिला कर संतुष्ट कर दूंगा। यू नो, ऐसा होता है ना कि आप किसी को संतुष्ट करना चाहते हो, अच्छा भोजन करा दो, फीस्ट करा दो, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो 56 भोग बनवाया दुर्योधन ने रहने के लिए, बढ़िया महल। उनको पता चला कृष्ण आ रहे हैं, बोले इनको सब संतुष्ट करके हमारी तरफ कर लेंगे। तो भगवान आए, जब सब हो गए तो उन्होंने कहा चलिए आपके लिए मैंने भोग बनाया, 56 भोग। और दूसरी ओर विदुर थे जो सोच रहे थे कि भगवान आए हैं शायद मेरे गरीब के घर में आए, उनके तो कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं था। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा चलिए आपके लिए मैंने 56 भोग तैयार करवाया, सब रेडी है, फीस्ट बड़ा। भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ मैं नहीं आऊँगा, और इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुम मेरे भक्त पांडवों से द्वेष करते हो। स्पष्ट कहा भगवान ने, क्योंकि तुम मेरे भक्त पांडवों से द्वेष करते हो इसलिए तुम्हारे यहाँ मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो दुर्योधन के भगवान को न मानने का या न पहचानने का, न जानने का, भक्ति ना करने का एक ही कारण था, भक्तों से द्वेष। जो व्यक्ति भक्तों का द्वेषी है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान उसकी ओर नहीं। तो गए नहीं, विदुर क्या चले गए। तो ये सब कथा अगली बार आएगी। और कोई प्रश्न किसी का? बचपन में हाँ जी
बचपन में ये भविष्य तय हुआ था कि ये पुनः ना सके
यस
और आगे जाके उसकी एक्टिविटीज ऐसी ही रहेगी जैसे संजय ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा और राधे जी ने कहा तो उतना सब होने के बाद में ऋतुराष्ट्र या अन्य कोई ऐसा कोई उसका मत ये करके काटिए कुछ करते
राजा जब हुआ करते थे तो राजा के मत को सारा महत्व दिया जाता था जो राजा कहेगा वो बाकी लोग अपना मत देते थे लेकिन उसकी बात नहीं काटते थे जैसे भीष्म हैं द्रोणाचार्य वो मत देते थे भीष्म ने दिया संधि करनी चाहिए हमें लेकिन फाइनल डिसीजन राजा की जो राजा ने बोल दिया वो सही है और राजा बड़े आसक्त थे अपने पुत्र से ये जानते हुए कि कुल का नाश करेगा फिर भी आसक्त इसलिए मार नहीं रहे इसलिए उसको मना नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज उनके खुद के हृदय में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि युद्ध होना चाहिए ये लोग समाप्त हो जाएं ताकि मेरा राज्य बना रहे तो इस कारण से उन्होंने रोका नहीं प्रयास किया अभी जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने रोका लेकिन आदेश नहीं दिया। राजा थे वो आदेश दे सकते थे दुर्योधन को मानना पड़ता या जैसे अगर किसी राजा का पुत्र बहुत खराब है नालायक है तो निकाल दें उसको। सगर महाराज ने अपने पुत्र को निकाल दिया राज्य से तो किया नहीं हालांकि ये भी सब जानता था लेकिन आसक्त था तो उन्होंने किया नहीं। तो जब तक राजा नहीं करेगा बाकी कोई कुछ कर नहीं सकते थे ये वो नियम था उस समय। जो सिंहासन पर बैठा है वो भगवान है नरदेव उसने जो कह दिया वही होना है तो उसने कभी कहा नहीं हालांकि समझा रहा है लेकिन वो ये भी तो कह सकता था कि बस मेरा आदेश है ये राज्य उनको दे दो खत्म ये उसने कभी नहीं कहा धृतराष्ट्र ने बाकी सब बड़ी बड़ी बातें करता रहा कि ये बात नहीं कही कर सकता था ना तो किया नहीं इसीलिए दुर्योधन को रोक नहीं सका कोई। ठीक है और कोई प्रश्न है किसी के तो ठीक है अभी कीर्तन करेंगे और कल से जैसे आपको बताया गया होगा जिन लोगों ने नाम दिए हैं उनके लिए कोर्स शुरू हो रहा है तो जिन्होंने नाम